அரிஹந்தானம் நமோ சித்தானம் நமோ ஆயிரியானம் நமோ வஜாயானம் நமோ லோயே சவசாயணம் ஹே சோபஞ்ச நமோ யாரோ சவ பாவ பணாசனோ மங்களானம் ச சவ்யேசிம் பரமம் ஹோய் மங்களம் சத்தாரி மங்களம் ஹரிஹந்தா மங்களம் சித்தா மங்களம் சாஹு மங்களம் கேவலி பணத்தோ தம்மோ மங்களம் சத்தாரி லோகுத்தமா ஹரிஹந்தா லோகுத்தமா சித்தா லோகுத்தமா சாஹு லோகுத்தமா கேவலி பணத்தோ தம்மோ லோகுத்தமோ சத்தாரி சரணம் பவஜாமி அர்ஹந்தே சரணம் பவஜாமி சித்தே சரணம் பவஜாமி சாஹு சரணம் பவஜாமி கேவலி பணத்தம் தம்மம் சரணம் பவஜாமி. बारह भावनाओं के आधार से हमने यहाँ चर्चा कल प्रारंभ की थी. अनादिकालीन इस जीव की विपरीत मान्यताएं और संयोगों में सुख बुद्धि किस प्रकार टूट सकती है, उसके लिए यहाँ सबसे पहला उपाय बतलाया गया, अनित्यता का चिंतन. सर्वप्रथम अनित्यता की चर्चा इसीलिए की गई कि यह जीव जो पदार्थ प्राप्त हुए हैं उनको नित्य रखना चाहता है, उनको बनाए रखना चाहता है, कायम रखना चाहता है. ये ह्यूमन नेचर है. कोई भी व्यक्ति हो और जो मिल गया इतना तो रहे, बढ़ाने का प्रयास करता है और जितना है उतने को मेंटेन रखने की सोचता है. मान लीजिए हमारे पास में एफडी है, जितने की भी समझ लीजिए आप, $25,000 की एफडी है हमारे पास में. कभी किसी प्रसंग में कम होती है ना तो सोचते 25 तो पहले ही थी, उतना तो होना ही चाहिए. अब उससे बढ़े, अपना जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता हुआ अच्छा लगता है, कम नहीं होना चाहिए. एक बार जितना हो गया लगता है इससे कम नहीं हो, इससे बढ़ता रहे. तो इस जीव को ये समझाया गया अनेक उदाहरणों के माध्यम से कि जगत का स्वरूप अनित्य है, जगत की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशीक है, स्थिर नहीं है और स्थिर रखने के प्रयासों से भी स्थिर नहीं रखी जा सकती. माने जब अनित्यता का उपदेश दिया गया, क्षणभंगुरता का उपदेश दिया गया, जम किंचि उत्पन्नम तस्य विनाशो हविणीय में ये समझाया गया, तो इसने तुरंत बदल करके ये बात कह दी कि आपकी बातें तो सब सही है. ये बात तो सही है कि राजा महाराजा चक्रवर्ती कोई भी नहीं दिखते हैं, ये सब हमने देखा है कि कोई भी आज तक रहे नहीं. स्वर्ण महल, रावण, रामचंद्र जी, ये तो कोई भी नहीं रहे. लेकिन एक बात तो है पंडित जी, अनित्यता है लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं बचाने की. इसने नया अपना एक दाव रख दिया, नई बात कह दी. अब जब इसने कहा कि मैं बचाने से बचा लूंगा, मैं कोशिश करके रख लूंगा, बनाए रखूंगा, टिकाए रखूंगा, तो आचार्यों को अनित्य के तुरंत बाद में अशरण भावना लिखनी पड़ी. ये पदार्थों के स्वरूप की चर्चा चल रही है, वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है. अनित्यता यदि वस्तु का स्वरूप है तो अशरणता भी वस्तु का स्वरूप है। अनित्य में यदि ये कहा गया है कि जगत के सारे पदार्थ इंद्र धनुष और बिजली की चमक के समान है, पानी केरा बदबुदा अस मानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। प्रातः काल होते ही जिस तरह से तारे छिप जाते हैं उसी तरह से ये मनुष्य शरीर की भी यही दशा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए, अपने घर की पत्नी की क्या बात करें, वो छोड़कर चले गई। ये जो तन की नाड़ी है ना धड़कन, ये साथ छोड़कर के चले जाती, ये भी अनित्य है। तो कहा साहब साहब की सारी बातें सही है लेकिन किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, कुछ मंत्र तंत्र का सहारा लेंगे, किसी देवी देवता का सहारा लेंगे, उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, कुछ ऐसे प्रयास करेंगे कि जिससे हम इनको बचा सके। मरना तो है, अनित्य है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या कोशिश भी नहीं करें क्या? हम बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं और उससे बचा भी सकते हैं। तो कहा तुम लाख कोशिश कर लो, इस जगत की प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अनित्य के साथ साथ में अशरण भी है, माने बचाने से भी नहीं बचेंगे। ये है अशरण। शरण माने सहारा, अशरण माने सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। हम किसकी शरण लें कि बच जाएं? यहाँ आगे चलकर बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण व्रत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। सम्राट है, महान बलशाली है, बहुत लंबी चौड़ी सेना है उसके पास में, लेकिन क्या वो उस क्षण को टाल सकता है? उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया, मुर्दा शरीर जो अशरण है, क्या वो योद्धा उसमें अपना जीवन डाल सकता है? ऐसा संभव है कि वो कुछ ऐसा प्रयास करे जिसके माध्यम से उसका जीवन वापस दे सके उसमें? तीन साल में ये बात संभव नहीं है। दौलत राम जी ने छेड़ाला में भी इसी प्रकार की बातें कही, उन्होंने कहा ऐसा, सुर असुर खगादिप जेते मृग ज्यो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। सुर असुर, सुर माने देवता और असुर माने भवनवासी यंत्र और ज्योतिष। सुर माने वैमानिक देव, असुर माने भवनत्रिक। सुर असुर मतलब चारों प्रकार के देव, और खगादिप माने विद्याधर। विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं लेकिन अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी होते हैं, जो आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं, खग कहलाते हैं वे। विद्याधर विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं, भारत ऐरावत क्षेत्र में विदेह क्षेत्र में भी रहते हैं। विजयार्ध नाम का एक पर्वत है, उसकी श्रेणियों में रहते हैं, बहुत प्रकार की रिद्धियां होती है, 500 विद्याएं रिद्धियां उनके पास में होती है, लेकिन वो तप के प्रभाव से नहीं, प्रैक्टिस और अनेक प्रकार से शिक्षा उपदेश के माध्यम से विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं। उनको कहते हैं खग। खग शब्द का अर्थ होता है वैसे पक्षी, ख माने होता है आकाश और ग माने गमन करना, तो खग माने जो आकाश में गमन कर सके, ख ग खग पक्षी। लेकिन यहाँ खगादिप शब्द का प्रयोग किया है विद्याधरों के लिए, चारण रिद्धि जिनको प्राप्त हो। सुर असुर खगादिप जेते जितने भी हैं, मृग ज्यो हरिकाल दलेते, हिरण जिस तरह से सिंह के मुख में आ जाए गाढ़ के बीच में, ऐसे समय में कौन बचा सकता है? मृग ज्यो हरि काल दले थे। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मणि मंत्र तंत्र क्या फर्क है मंत्र और तंत्र में? मंत्र और तंत्र में क्या अंतर है? जो उच्चारण करके शब्दों के माध्यम से प्रभावशाली कुछ असर करे, प्रभावशाली ऐसे शब्द, वे कहलाते हैं मंत्र। और तंत्र कहलाते हैं बाहरी साधन, कुछ इस तरह का ताबीज है, कुछ धागा है, कुछ धूल है, मतलब जो उस मंत्र के माध्यम से प्रयोग की गई कुछ सामग्री है वो कहलाती है तंत्र। जैसे मंत्रित किया हुआ कोई धूल मिट्टी किसी के सर पे फेंक दी और वो बहकी बहकी बातें करने लगा, ये तंत्र। जैसे मंत्र तंत्र आदि बहुत हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं कि मंत्रों की सामर्थ्य नहीं है, रिद्धियों की और मंत्रों की भी बहुत सामर्थ्य है। 64 रिद्धियों का वर्णन तो हमारे यहाँ किया ही गया है, लेकिन किसी रिद्धि की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मरते हुए जीव को बचा सके, मरते न बचावे कोई। किसी देवता की शरण ले लें, किसी परमात्मा की शरण ले लें, जगत में किसी की भी शरण ले लीजिए आप, कोई आपको बचा नहीं सकता है। कब नहीं बचा सकता? जब मरण का काल आ गया तब, और मरण का काल नहीं आया तो कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। समय सार ग्रंथाधिराज में मूल गाथाएं इस प्रकार की दी गई है, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। मार नहीं सकते किसी को भी, सब आयु से जीवित रहे यह बात जिन वर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। किसी को आयु नहीं दे सकते तो कैसे जिंदा रखोगे, किसी की आयु ले नहीं सकते तो कैसे मारोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और मरण उसके आयु कर्म पर निर्भर करता है, हमारे विकल्पों पर निर्भर नहीं करता है। हर व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है, मनुष्य त्रियंच और देवगति के जीवों में सब जीव ये चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, कोई नहीं मरना चाहता है। साहब हमने तो कईयों को देखा है आत्महत्या करते हुए, आप कह रहे हो कोई मरना नहीं चाहता है। शास्त्र में लिखी है ये बात कि तीन गति के जीव मरना नहीं चाहते और नारकी जीव मरना चाहते हैं। नारकी प्रति समय इतने दुख भोगते हैं कि वे हर समय मरण की अनुभूति करते हैं, मरना चाहते हैं। वे मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते, नारकी जीव। और मनुष्य त्रियंच और देव जीवित रहना चाहते हैं लेकिन जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन साहब कई लोगों को ऐसे देखा है हमने जो आत्महत्या करके मर गए हैं, तो आपकी ये बात तो सही नहीं है। तो टोडरमल जी ने लिखा, कषायों की वेदना सही नहीं जाती इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। जब कषायें बहुत तीव्रता पर होती है तो इस जीव को आत्महत्या करने का विकल्प आता है, और यदि उस समय उस व्यक्ति को रोक लिया जाए तो फिर वो आत्महत्या नहीं कर सकता। एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास में खड़ा था और आत्महत्या करने ही वाला था, और हमने वहां पहुंचकर एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या करते हो? नहीं मर जाने दो मेरे को, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, बहुत दुखी हूं मैं। अभी ठहरो तो सही, नहीं नहीं छोड़ दो मेरे को, बता रहा था। हमने कहा अच्छा तू मर जाना, लेकिन पहले मेरी बात मेरे को बता तो सही, हुआ क्या, तकलीफ क्या है तेरे को। तो उसने अपनी पूरी की पूरी आप बीती सुना दी, मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा किया है और मैं तो अब जीना नहीं चाहता हूँ। तो हमने उससे कहा कि ठीक है भैया, तुमने बहुत दुख भोगे हैं और वास्तव में तुम्हारे साथ जो घटना घटी है ये तो ऐसी है कि तुम्हारे को तो नहीं जीना चाहिए, चलो मैं छोड़ता हूँ, तुम मर जाओ। अब नहीं मरता। क्या कि क्या हुआ कि वो जो तेजी थी ना एकदम, वो शांत हो गई। अब उसके लिए किसी पहरेदार को लगाने की जरूरत नहीं है, अब छोड़ दो आप, वो नहीं करेगा आत्महत्या। माने कोई मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता, वो कषाय एकदम इतनी तेज होती है, एकदम इतनी तीव्रता में होती है कि ये मर जाना चाहता है। उस तकलीफ को भोग नहीं पाता। ये मानसिक वेदनाएं इस प्रकार की होती है। जिसका आयु कर्म पूरा हो गया हो उसे तो कौन बचा सकता है, और जिसका आयु कर्म शेष हो उसे कौन मार सकता है। ये पूरे सृष्टि का इसी प्रकार का स्वरूप है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जो मारने के लिए आए हों वे मर जाते हैं, क्या जिनकी सब तरफ से मौत दिखाई दे रही हो वे बच जाते हैं। इसलिए ये बहुत स्वतंत्र है ऐसी व्यवस्थाएं। एक कबूतर बैठा था एक पेड़ के ऊपर और उसे मारने के लिए एक शिकारी नीचे खड़ा था जो निशाना साधे हुए था उस कबूतर के ऊपर। मौत दिखाई दे रही थी उसकी। और एक और ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि उधर एक बाज था जो चारों तरफ ऐसे घूम रहा था उस कबूतर पर झपट्टा मारने के लिए। दोनों तरफ मौत दिखाई दे रही है। यदि कबूतर बैठा रहता है तो शिकारी का तीर लगेगा, और यदि वो उड़ता है तो बाज उसको पकड़ के खा जाएगा। सब तरफ से मौत दिख रही है, क्या करें? आंख बंद करके बैठ गया, जो होगा सो होगा। दो मिनट बाद में एकदम धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। उसने आंख खोल कर देखा तो उस जंगल में एक सर्प ने शिकारी को डस लिया। शिकारी तो गिरा ही, लेकिन हाथ से जो तीर छूटा वो बाज को जाके लग गया। दोनों जो मारने वाले थे वे दोनों मर गए, और जिसकी आयु शेष थी वो बच गया। ऐसा होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं दुनिया में बहुत घटती हैं। लाक्षाग्रह में मारने का प्रयास किया गया पांडवों को, अनेक प्रकार के प्रयास नहीं किए गए कौरवों के द्वारा। फिर हुआ क्या?
बच्चे वो लोग मर गए।
जो मारने वाले थे वे मर गए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दुख देने और कष्ट देने का प्रयास ये वास्तव में स्वयं के लिए ही अनिष्ट बीज बोने जैसा है। हमारे स्वयं के लिए ही दुख का कारण बनेगा। यहाँ तो आचरण भावना में इतना सरल पंक्तियों में ये बात कह दी कि भैया ये जो संसार है, इस संसार में बहुत बलशाली सम्राट आदि दिखाई देते हैं। सेना है उनके पास में, राजपाट है, चक्रवर्ती जैसे सम्राट, हजारों स्वर्ग के देव चक्रवर्ती की सेवा करने वाले होते हैं, पता है आपको? हजारों देव, उसके पास 14 रत्न और 9 निधियां होती है। प्रत्येक रत्न और निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव होते हैं।
रत्न की रक्षा
करने वाले
14 रत्न
होंगे, 14 रत्न और 9 निधियां, उनकी भी रक्षा करने वाले निधि है। वो इसी तरह के रत्न जैसे ही है। हाँ, अब कैसी स्थिति बनती है सोचिए आप। उसकी पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव होते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। हजारों देव जिसके सेवक बनकर के सामने खड़े हों, उस व्यक्ति का भी जब आयु कर्म पूरा होना होता है तो कोई नहीं बचा सकता है। शुभम चक्रवर्ती को पकड़ करके ले गया साथ में, वो रसोईया व्यंतरवासी देव, लवण समुद्र में सुना होगा तुमने? नहीं सुना? शुभम नाम का एक चक्रवर्ती था, बहुत बड़ा सम्राट था, और वो ऐसा चक्रवर्ती था कि खाने पीने का बहुत शौकीन था। एक बार उसके रसोइये ने बहुत सुंदर खीर बनाई, कुछ अच्छा भोजन बनाया, और जब वो भोजन सामने आया और चक्रवर्ती ने खाने का प्रयास किया, बहुत गर्म था, जीभ जल गई। इतना तेज क्रोध आया कि थाली उठा करके रसोइये के मार दी। गरम गरम खाना था, रसोइये के ऊपर गिरा, वो वहीं जल करके मर गया। रसोइया मर गया तो मर करके व्यंतरवासी देव हो गया। बदला लेने का भाव आया उसके मन में कि उस चक्रवर्ती से बदला लेना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए उसको। ठीक है, क्या कह रहे हैं उसके लिए? अभी चक्रवर्ती के लिए तो इतने, मैं तो व्यंतरवासी देव, उनकी रक्षा के लिए तो हजारों देव होते हैं स्वर्ग के, मैं कैसे उसका उससे बदला ले सकता हूँ? तो उसने एक फार्मर का वेश बनाया और सर के ऊपर एक टोकरा रख करके और माया से रिद्धियों से, चमत्कार से, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल, एप्पल है, संतरा है, अनार है, आम है, ऐसे अलग अलग बहुत सुंदर फल, और वो स्वादिष्ट इसलिए क्योंकि वो माया से बनाए हुए थे, चमत्कार से बनाए हुए थे, राजा के दरबार में ला करके और शुभम चक्रवर्ती के सामने भेंट दिए कि साहब मैं आपके लिए बहुत स्पेशल फल लेकर के आया हूँ, आप स्वाद ले रहे हैं इनका, आप खा करके देखें, बहुत ही अद्भुत है। जब शुभम चक्रवर्ती ने खा करके देखे तो वो तो वास्तव में गजब थे, क्योंकि वो तो दुनिया कभी खाए ही नहीं थे उसने ऐसे फल, तो कहाँ खाता हो, इस तरह के तो मिलते ही नहीं थे कहीं। उसने पूछा कि कहाँ से लेकर के आए हो? साहब इसके तो बगीचे हैं हमारे उधर, बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं। कहाँ पर है? कि महाराज आपकी सीमाओं में नहीं है, आपकी सीमाओं के बाहर है। तो कोई बात नहीं, चलो वहाँ, उसको हम हमारी सीमाओं में मिला लेंगे। इसको और क्या चाहिए था, बैठाया साथ में और इसकी सीमा के बाहर लवण समुद्र में ले गया, और वहाँ समुद्र में ले जाकर जहाँ इसकी कोई रिद्धियां साथ में नहीं थी, और वहाँ भयानक रूप बना लिया व्यंतर ने और उपद्रव करने लगा उसके ऊपर। शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र का जाप करने लगा। चक्रवर्ती सभी जैन होते हैं, सम्यक दर्शन की अवस्था में चक्रवर्ती तो पद बनता है, चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण आदि पदवियां चक्रवर्ती अवस्था में ही बनती है, सम्यक दर्शन की अवस्था में बनती है ये सारी पदवियां। ऐसी स्थिति में नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था, नमोकार मंत्र की शक्ति के प्रभाव से उसकी रिद्धियां कुछ काम नहीं कर रही थी, लेकिन इसके मन में घबराहट तो बहुत थी, असर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तकलीफ कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन वो जो उपद्रव कर रहा है वो दिख तो रहा है आंखों से, घबराहट तो हो रही है। देव भी समझ गया कि ये जरूर किसी मंत्र का जाप कर रहा है, जब तक ये मंत्र का जाप करता रहेगा मेरा असर नहीं चलेगा। उसने शुभम चक्रवर्ती से कहा कि तुम किसी मंत्र का जाप करते हो, उस मंत्र को यहाँ पानी में लिखो उंगली से, हाथ से, और उसे अपने पैर से मिटाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, होनहार कोटी थी, पानी में लिखा उसने मंत्र और पैर से जैसे ही मिटाया, माने उस मंत्र के प्रति जो विराधना का भाव था, तो वो जो सुरक्षा हो रही थी वो सब सुरक्षा बदल गई, देव का प्रभाव हुआ, मर गया, मर के सातवें नरक में चला गया शुभम चक्रवर्ती। तो जब जिसका मृत्यु काल आता है, जब जिसका समय नजदीक आता है, तो वे सारे के सारे उसके प्रयास उल्टे ही चलते हैं, कोशिश भी उल्टी ही चलती है। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, जिसकी मौत आती है वो अपने आप उधर जाता है, गीदड़ की मौत आती है तो शेर की तरफ दौड़ता है, जिसका अंत समय आ जाता है वो उधर ही जाता है। अनेक बार ऐसे प्रसंग देखे गए हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और पिछले स्टेशन पर अनेक यात्री उतरे और अनेक चढ़ गए, जहाँ एक्सीडेंट होना था, जिनका एक्सीडेंट होना था वे ट्रेन में चढ़ गए, और जिनको दुर्घटना से बचना था वे गलती से उतर गए थे और उनकी ट्रेन छूट गई। चांस की बात है,
आयुष्य कर्म था,
आयुष्य कर्म था। वैसे अशरण भावना के माध्यम से जीवन की अशरणता तो बतला ही रहे हैं, संयोगों की अशरणता भी अपने को यहाँ समझनी चाहिए। गाड़ी लेकर के आए, परमानेंट नहीं रही, अनित्य तो है ही, आप कोशिश करें, मैकेनिक के जाएं, दिखाएं, उसको ठीक कराएं, तो भी वो ठीक नहीं रहेगी, तो भी बनी नहीं रहेगी। हमारा स्वास्थ्य है, अनुकूल से प्रतिकूल तो होगा ही, अनित्य है। अब ये अनित्यता के साथ साथ में अशरण भी है, हर वस्तु के स्वभाव की चर्चा चल रही है ऐसी, अनित्यता के साथ साथ में अशरण का भी समझ लेना चाहिए। ये बहुत सुंदर, दादा ने बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी है इस अशरण भावना के संदर्भ में। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि भाई ये जो दिखाई देते हैं ना घर परिवार और ये सब, हिसाब इन्होंने बचा लिया, इन्होंने रक्षा कर ली, ये सब व्यवहार के कथन है, निश्चय से तो नहीं बचाया जा सकता है किसी को भी। कई बार अपने को ऐसा लगता है अरे साहब आज तो ऐसी घटना घट रही, वो तो ये आ गए समय पर इसलिए बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही गए होते, ऐसा लगता है ना हमारे को। कभी ऐसा लगता है कि हमारे को तो ये बस परमात्मा ही शरण है, इनकी शरण में चले गए सब काम बराबर हो गया। अरे भैया निश्चय शरण आपको आप व्यवहारे परमेष्ठी जाप, निश्चय से तो अपनी आत्मा ही शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है, और कोई शरण नहीं है। आपको यदि वास्तव में शरण लेनी है, आपको यदि जगत में कहीं सहारा चाहिए, तो पंच परमेष्ठियों के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है और कोई शरणभूत नहीं है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांच ही शरणभूत हैं, और ये पांच भी क्या है, ये पांच भी कहने के लिए है। वस्तु स्थिति तो ये है कि इन पांचों में जो एक कॉमन है वो हमारे लिए शरणभूत है। कौन है पांचों में कॉमन? आत्मा। हमने पूछा अरंत परमात्मा शरणभूत है, तो अरंत कौन है? अरंत कौन होते हैं? अरंत तो बीतराग होते हैं, या अरंत तो परम आधारित शरीर वाले होते हैं, अरंत भगवान तो समूल शरण वाले होते हैं, अरंत वे होते हैं जिनके माथे पे तीन छत्र होते हैं, पीछे भामंडल होता है, वही होते हैं ना अरंत। ये जो अरंत की व्याख्या की गई है, ये सब अरंत की व्याख्या व्यवहार से, निश्चय से इसका नाम अरंत नहीं है। हाँ, अरहंत अवस्था तो आत्मा की अवस्था है, और ये जो दिखाई दे रहा है परम औदारिक शरीर, ये तो शरीर की अवस्था है। छत्र चंवर भामंडल ये तो संयोग की अवस्थाएं है, परद्रव्य है। अरहंत अवस्था कोई भामंडल को नहीं होती, अरहंत अवस्था कोई शरीर की नहीं होती, अरहंत पना तो आत्मा की अवस्था है, सिद्ध अवस्था तो आत्मा की अवस्था है, आचार्य उपाध्याय साधुपन तो आत्मा की अवस्था है, सब आत्मा की अवस्थाएं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आत्मा ही है शरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। हरिहंस सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठीपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। वास्तव में कहीं शरण के लिए, सहारे के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ये जीव सहारा खोजता रहता है। हमें लगता है कोई ना कोई शरण चाहिए हमारे को, कौन मिलेगा, किसके साथ? हिसाब आप बाहर जा रहे हैं और कौन जा रहा है साथ में, किसके साथ में जा रहे हैं, वहाँ कौन मिलेगा, किसका सहयोग होगा? हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए, अकेलापन नहीं। फिर ये कहता है कि नहीं साहब कोई भी साथ नहीं है, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे साथ है, अरे प्रभु मेरे साथ है। अरे प्रभु भी तुम्हारे लिए शरणभूत नहीं होंगे। वास्तव में प्रभु कौन, कौन है प्रभु? कि जो हमें हमारा रास्ता दिखा दे, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए, वे हमारे लिए परमात्मा है। वे हमारे गुरु हो सकते हैं, वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते जो ये कहें कि तुम तो हमारी शरण में आ जाओ। वे सच्चे गुरु हो सकते हैं जो ये कहें कि तुम अपनी शरण में चले जाओ, हाथ पकड़ करके जो हमें हमारे घर का रास्ता बतलाए। मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेठ का पुत्र, बहुत वैभव संपन्न थे सेठ जी, और उनका इकलौता पुत्र था, कदाचित वो आपका जानने वाला हो, सेठ जी को भी आप जानते थे और सेठ जी के बच्चे को भी आप जानते थे, और आपने उसे कहीं इंडिया में किसी चौराहे पर भीख मांगते हुए देख लिया, सेठ जी के बच्चे को। आप जानते हो सेठ जी का बेटा भीख मांग रहा है यहाँ पर, और उसने आपके आगे आकर के हाथ फैलाए और $2 मांगे, $1 मांगा। आपके परिचित हैं, आप जानते हैं, सेठ जी को भी जानते हैं, उसके बच्चे को भी जानते हैं। वो कह रहा है कि कृपा होगी थोड़ी सी, $1-2 दे दो ना। बोलो आप उसके ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, $1-2 देंगे कि नहीं? दे देंगे। आप उसके सच्चे उपकारी नहीं है यदि आप उसको $2 दे देते हैं तो? क्या बात कर रहे हो साहब, एक तो हमने वो मांग रहा था, रिक्शा मांग रहा था, और हमने उसको $2 दे दिए, हम उसके उपकारी नहीं है। असली उपकारी तो वो है जो उसको एकाध रुपया न दे दे, उसका हाथ पकड़ करके उसे घर तक पहुंचा दे। कौन होगा असली उपकारी? अरे तू भीख मांगता है, तेरी स्मृति भंग हो गई है, तेरी याददाश्त चली गई है, तुझे पता नहीं है, तेरे सर पे चोट लग गई है, तू गरीब नहीं है, तू दरिद्री नहीं है, तू वैभव संपन्न है, तुझे अपने घर का पता नहीं है, हम जानते हैं तू सेठ जी का बेटा है, उसको हाथ पकड़ करके उसके घर पहुंचा दे रहे हैं, वो उसका असली उपकारी हो सकता है। हम गए परमात्मा के पास में और हमने कहा कि हे प्रभु कुछ मिल जाए, थोड़ी कृपा आपकी हो जाए तो अपने को भी थोड़ा सा घर में सुख सामग्री शांति मिल जाए। गलत बात है, वे प्रभु वे परमात्मा हमारे उपकारी नहीं हो सकते जो भक्तों पर उपकार करके उनके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ सामग्री संपत्ति कुछ दे दे रहे, वो उपकारी नहीं हो सकते। असली उपकारी कौन हो सकते हैं? ये कहते हैं कि अरे तू भी मेरे जैसा प्रभु है, तू भी वैभव संपन्न है, तू दरिद्री नहीं है, तू परमात्मा है, स्वयं परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है, तीन लोक का नाथ हो सकता है, तू तुझमें ऐसी सामर्थ्य है और मुझे मेरे घर का रास्ता बता देते हैं। ये परमात्मा मेरे लिए सच्चे परमात्मा है, वो भगवान शरण लेने योग्य है, उनकी शरण में जाना जो हमारे को हमारी शरण तक पहुंचा दे। देखिए शरण लेने के लिए जाता है और गलत व्यक्ति की शरण में पड़ गया तो क्या होगा, 84 के चक्कर खाएगा। इसलिए जो वास्तविक शरण बतलाए उनकी शरण में जाना, इसलिए अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंतों की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्धों की शरण में जाता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि, साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवली प्रणत्तम, केवलियों के द्वारा कहा गया। धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म ही हमारे लिए शरण भूत है, किसकी शरण में जाएं, कौन सहारा देगा हमारे को? धर्म ही एकमात्र ऐसा है, धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही कल्पतरु है, जिसके माध्यम से सर्व मनोरथों की पूर्ति होती है। वो आगे अपन चल करके धर्म भावना में चर्चा करेंगे उसके बारे में। यहाँ तो आचरण भावना के अंदर इतनी बात कही है कि शरण नहीं है, आचरण भावना में इतनी बात कही है कि कोई शरण नहीं है। आप अकेले बंबई जा रहे हैं, कौन शरण होगा? अकेले आप यहाँ से इंडिया आए कि वहाँ कौन शरण होगा? जैसा पहले किसी से बात की है, कोई है अपना, कोई परिचित रहता है? इंडिया से हम यहाँ अमेरिका आए, जैसा किसके यहाँ जाएंगे, किसके यहाँ ठहरेंगे, कौन है? हाँ है ना अपने लिए शरण भूत महेंद्र भाई, कौन शरण भूत है, कौन सहारा है? ये तो व्यवहार से उपचार से शरण कहने में आते हैं। निश्चय से यदि तुझे संसार से मुक्त होना है, संसार से पार होना है, तो अपना आत्मा ही शरण है। कोई डॉक्टर शरण नहीं है, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। आयु कर्म यदि आपका शेष होगा तो डॉक्टर बचाएंगे, और आयु कर्म शेष यदि नहीं होगा तो डॉक्टर ये कहेंगे कि आप दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। अब हमारी जरूरत नहीं है, आप भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, विश्वास रखो उनके ऊपर। मुझे समझ में नहीं आता जब लोग इस प्रकार की बात कहते हैं तो वहाँ भरोसे का मतलब क्या होता है। भगवान पे भरोसा रखो, क्या भरोसा रखे? ज्ञानियों को भी भगवान पे भरोसा है और अज्ञानी भी ये कहता है भगवान पे भरोसा रखो। अज्ञानी ये समझ करके कहता है कि भगवान पे भरोसा रखो वो बचाने आ जाएंगे, और ज्ञानी ये कहता है भगवान पे भरोसा रखो जैसा उनके ज्ञान में झलता है वैसा ही होगा। भगवान पे भरोसे का क्या मतलब है कि साहब हमें तो पांच माह भगवान पे पूरा भरोसा है, क्या भरोसा है? बचाने आ जाएंगे, रक्षा के लिए उतर आएंगे। हाँ साहब भरोसा है हमारे को तो पूरा, किस बात पे भरोसा है कि साहब आने चाहिए, मैं उनका सच्चा भक्त हूँ, मुझे ही बचाने के लिए नहीं आएंगे संकट के काल में तो किसको बचाने जाएंगे फिर? तो उनको एक ही काम होगा वहाँ बैठे बैठे, उन परमात्मा के पास में काम क्या है आखिर? बैठे बैठे भक्तों को देखते रहे, और एक आध भक्त तो है नहीं, उनके भक्त तो तीनों लोकों में है, तो फिर दौड़ दौड़ करके एक एक की सेवा करते रहे, एक एक की सुरक्षा करते रहे, ये काम रह जाएगा। बोलो आप ऐसी पदवी चाहते हैं क्या, ऐसा पद चाहते हैं क्या जहाँ आप शांति से बैठ नहीं सके? कौन चाहेगा ऐसी परमात्मा दशा जहाँ हम शांति से बैठ नहीं सके, जहाँ हमारे को फुर्सत नहीं हो? अरे यहाँ रहते थे तो अकेले अपना काम करते थे, और वहाँ पहुँच गए परमात्मा बन गए तो सब क्या काम करते हैं। ऐसी परमात्मा दशा किसको चाहिए भला। जगत के लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान सबका भला करते हैं, भगवान सबका उपकार करते हैं, और भगवान के सामने एक बार मैं गया तो भगवान से मैंने भी ऐसी डिमांड करी कि हे प्रभु थोड़ा बहुत संकट मिटा दो, ये परेशानियां दूर कर दो। तो भगवान ने कहा कि ये परेशानियां फैलाई किसने थी, कि प्रभु किया तो मैंने ही था। तो बोले गंदगी करेगा तू और सफाई के लिए आऊंगा मैं। मेरी तो बोलती बंद हो गई भगवान के सामने। मैं क्या कहता जब भगवान ने सामने से मुझे ये बात कह दी कि गंदगी तू फैलाएगा और झाड़ू लगाने के लिए मुझे बुलाएगा, तुझे शर्म नहीं आती। मेरे को तुरंत समझ में आ गई कि यदि ये राग द्वेष काम क्रोध आदि की गंदगी मेरे द्वारा फैलाई गई है तो इसको सफाई करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। कोई परमात्मा ऐसे नहीं है जो नीचे उतर करके आ जाएंगे। कोई भगवान ऐसे नहीं हो सकते जो सफाई करने के लिए आ जाएंगे, और ये उचित भी नहीं है उनसे इस प्रकार की बात कहना। आखिर हम चाहते क्या है तीन लोक के नाथ से? उनकी रंच मात्र भी गरिमा नहीं है हमारे हृदय में? तो जिनके हृदय में उनकी वास्तव में महिमा होती है, गरिमा होती है, वे बराबर इस बात को जानते हैं कि नहीं, इनसे किसी प्रकार की डिमांड नहीं करना, इनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना। तो फिर लोग तुरंत ये कह देते हैं फिर क्यों जाएं भगवान के पास, क्यों दर्शन करें, क्यों शरण कह रहे हो आप? अरहंत भी शरण है, सिद्ध भी शरण है, किस लिए शरण है फिर? हम तो सोच रहे थे हमारे संकट के काल में हमारे लिए सहयोग करें तो हमारे लिए शरण, हमारे संकट के काल में सहयोग नहीं करें तो काई के शरण, किस बात के शरण भूत है? तो कहा भाई साहब आप गलत फहमी में हैं, शरण तो इसलिए है कि असली शरण वे हैं। क्यों? क्योंकि वे आपको आपका रास्ता बता देंगे, इसलिए शरण है। हम अरहंत सिद्ध या साधु की शरण में जाते हैं तो वे ये नहीं कहते आजा बेटा मेरे पास में बैठा रहे, वो ये कहते हैं तो अपने आत्मा की शरण में चले जाओ और मेरे बगल में आकर के बैठ जा। जो अपने आप की शरण लेते हैं ये परमात्मा बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। ये भगवान बनने का मार्ग बतलाते हैं वे। दुनिया में कौन ऐसा दुकानदार होगा जो किसी को अपने जैसी दुकान लगाने की बात कहेगा और अपने बगल में दुकान खोलने की बात कहेगा? दुनिया में कौन ऐसा उपकारी मिलेगा जो लोगों को ये कहेगा कि तुम ये काम करके मेरे बराबर आ सकते हो? कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा जो बराबर में दुकान खोलने वाले को ये कहे कि मैं ये बिजनेस इस तरह से चलाता हूँ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं, इस तरह के तुम इनको इनसे काम कर सकते हो, मैं यहाँ से परचेजिंग करता हूँ और इनको सप्लाई करता हूँ, अपने बराबर में दुकान खोलने वाले को कोई बतलाएगा? दुनिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा। यहाँ कहते हैं ये जो परमात्मा है जो वीतरागी है वे ही इस प्रकार की बात कर सकते हैं। ये वीतरागी परमात्मा ही इस प्रकार की बात कहते हैं तुम भी भगवान हो, तुम भी मेरे समान हो। अपने आप के प्रति बड़प्पन का भाव नहीं, जो शरण में आया, जो भगवान की शरण में आया वो भगवान बन जाए, ऐसा उपदेश देते हैं। कैसा गजब का मार्ग है ये, आचरण भावना के माध्यम से कह दिया। उस क्षण को टाल सकेगा क्या सम्राट महाबल सेनानी? जैसा बातें तो समझ में आ गई, ये बातें हमारे गले उतरती है कि हमने देखो हमारे वो थे बाबूजी थे, वो थे नाना जी थे, दादाजी थे, हमने उनको बचाने की खूब कोशिश करी लेकिन फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बहुत हमने पैसा खर्च किया लेकिन फिर भी अंत में उनको बचाया नहीं जा सका। ये देखते हैं सब, तो भी समझ में आना कोई कठिन थोड़ी ना। आचरण भावना का उपदेश दिया तो हम कोई मंद बुद्धि तो है नहीं, समझ में आती है हमारे सब बात। हाँ साहब आपकी बात बिल्कुल बराबर है, अनित्य भी है, अनित्य भावना के माध्यम से कहा बचेंगे नहीं, और आचरण के माध्यम से कहा बचाने से भी नहीं बचेंगे। अनित्य में कहा क्षणभंगुर है और आचरण में कहा कि तुम कोशिश करके भी इनको बचा नहीं सकते हो। ठीक है, दो बातें जब इसको बहुत विस्तार से कही गई तो फिर तुरंत इसने बदल करके एक बात और कह दी। क्या कह दी? हाँ आपकी बात समझ में आ गई, अनित्य भी है आचरण भी है, अब हमसे क्या चाहते हो? हम कोशिश नहीं करें, हम इसका मातम मनाएं, हम दुखी हो ये छोड़ करके चले जाएंगे, हम डॉक्टर के भी नहीं दिखाए, हम क्या करें बतलाओ आप। देखो सीधी सी बात सुन लो आप, भले ही अनित्य हो और भले ही आचरण हो, लेकिन जब तक है तब तक तो हमारे को भले आदमी सुख भोग लेने दो इसमें। तो फिर संसार भावना बतलाई आचार्यों ने तुरंत बाद में, जब इसने कहा ना अनित्य और आचरण होने के बावजूद भी जब तक है तब तक मैं इनमें से सुख भोग लेता हूँ। बाजार से हम कोई भी चीज खरीद करके लाए, आईपैड लेकर के आए, अनित्य है ठीक है, फिर खराब होने लगेगा तो हम कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, एंटीवायरल डलवाएंगे, अनेक प्रकार की कोशिश करेंगे, फिर भी ये बोले अब तो ये तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो इंजीनियर है वो ये कहेगा कि नहीं अब तो इसको आप कचरे के डब्बे में डाल दो, अब ये कुछ नहीं हो सकता, इसका खराब हो गया। होंगी अपने घर में बहुत सारी चीजें ऐसी जो लाए थे तो बहुत शौक से लेकर के आए थे, तो बहुत समय तक उसे ठीक करा करके चलाते रहे, रेडियो हो, ट्रांजिस्टर हो, गाड़ी हो, पुराने व्हीकल हो, जो भी हो, फिर आज उसकी स्थिति ऐसी है तो उसको कचरे में डाल दो, अनित्य भी और आचरण भी। लेकिन ये अनित्य और आचरण जब होंगे तब होंगे, जब तक इनका नाश नहीं हो, जब तक ये वर्क कर रहे हैं बराबर, तब तक तो टीवी में से सुख भोग लेने दो। माना कि खराब हो जाएगी, माना कि मैकेनिक भी सही नहीं कर पाएंगे, अनित्य और आचरण है, लेकिन जितने समय तक ये खराब न होवे तब तक तो इनमें से सुख भोग लूं। तो फिर यहाँ ये समझाया गया संसार भावना के माध्यम से कि आप बहुत बड़ी गलती पर हैं, इनमें सुख है ही नहीं, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। इस संसार में सुख नहीं है ये चित्रण किया गया है संसार भावना के माध्यम से। संसार भावना के माध्यम से ये समझा दिया गया कि संसार में सुख नहीं है। देखिए आपने पढ़ता हूँ पंक्तियाँ आगे क्या लिखी है, संसार महा दुख सागर के प्रभु दुख मैं सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। संसार महा दुख सागर के, ये संसार कैसा है, दुख सागर है, ये संसार भावना है, नया चिंतन। देखो आप उसने नया तर्क प्रस्तुत किया था और आचार्यों ने उसका जवाब देते हुए नया चिंतन करने की बात कही। ये चिंतन करना इस प्रकार का, क्योंकि ये भावनाएं है ना, ये सब चिंतन करने योग्य है, सुन लेने के लिए नहीं और न ही पाठ कर लेने के लिए, ये सारी की सारी भावनाएं चिंतन के लिए, चिंतन चलता रहे। ओ ऐसा स्वरूप है, इनमें सुख नहीं है, मुझको न मिला सुख, सब सुख मिला तो है, किसी ने क्षण भर भी ना मिला। क्या कह दिया यहाँ, संसार रूपी महा दुख समुद्र में प्रभु दुखमय सुख आभासों में, जो दुखमय था और सुख का आभास लगता था, सुख का भ्रम हमें लगता था, सुख तो था ही नहीं, भ्रम से सुख लगता था हमारे कल्पना से ऐसा लगता था कि इसमें सुख है। कल हमने कही थी एक दो बातें इस तरह की, आप लगा लीजिए किसी भी चीज में, पांचों इंद्रियों के विषयों में आप इस तरह की बात लगा करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि इसमें सुख नहीं है। लगता तो था कि इसमें सुख है, सामग्री को इकट्ठा तो सुख प्राप्ति के लिए किया था, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चक चूर है। हेमंत जी की पंक्ति है, आप गुजराती में बोलते हो, हम हिंदी में बोलते हैं,
सुख प्राप्त करता सुख ठड़े लक्ष्य,
हाँ सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चक चूर है। हाँ सुख प्राप्त करता सुख चढ़े थे, बोलो क्या अर्थ है, हम तो सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, सुख चढ़े थे, सुख दूर भाग रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है सुख हमारे को, हमारे द्वारा किए गए अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी सुख मिल क्यों नहीं रहा है। ये स्थिति ऐसी नहीं है कि रेगिस्तान में गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, जो जो एक्सीलेटर दबाता है, जो जो रेस देता है, त्यों त्यों और ज्यादा धसता चला जाता है, दिन उसमें जमीन में मिट्टी में और जाता है, जो जो कोशिश कर रहा है त्यों त्यों और नीचे जा रहा है। चाहता तो सुखी होना है, फिर सुखी क्यों नहीं हो जाता है? हमारे जितने प्रयास चलते हैं वो सब सुखी होने के लिए चलते हैं मुकुंद भाई, हम सब कुछ सुखी होने के लिए करते हैं। एवरीथिंग जो कुछ भी हमारे माध्यम से किया जा रहा है, कोई भी क्रियाकलाप, भोजन करते हैं तो सुखी होने के लिए, नहाते हैं तो सुखी होने के लिए, सोते हैं तो सुखी होने के लिए, रोते हैं तो सुखी होने के लिए, खाता पीता है, नहाता धोता है, उठता बैठता है, सोता है, सब काम सुखी होने के लिए करता है, लेकिन सुखी हो नहीं पाता है। मैं कहता हूँ कई बार मीठा खाते खाते परेशान हो जाता है तो सुखी होने के लिए नमकीन खाने लगता है, खाते खाते परेशान हो जाता है तो सुखी होने के लिए खाना बंद कर देता है, बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो लेट जाता है, लेटे लेटे परेशान हो जाता है तो सो जाता है, सोते सोते परेशान हो जाता है तो जग जाता है। आप बताओ तो सही, बैठने में सुख है या नहीं? यदि बैठने में सुख हो तो फिर बैठे ही रहो ना, सुख भोगते रहो। आप उठते क्यों? कि नहीं नहीं बहुत देर हो गई बैठे बैठे, ऐसा मतलब वहां सुख नहीं लग रहा था आपको। मैं सुख की व्याख्या करता हूँ इस प्रकार की, सुख किसे कहते हैं? अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं आप सुख के बारे में? मैं यदि अपने शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ, जहाँ से जीव हटना नहीं चाहे, जहाँ से जीव बदलना नहीं चाहे, उसका नाम सुख है। शास्त्र की बात नहीं कहता, जहाँ से जीव बदलना चाह रहा है इसमें सुख नहीं है। आप ऐसे बैठे थे और ऐसे बैठे बैठे आपका मन हुआ ऐसे होने का, एडमिन उस अवस्था में सुख नहीं था तो सुखी होने के लिए पीछे से राना लगा दिया, अब ऐसे बैठे बैठे थोड़ा सा अनिजी हुआ तो फिर ऐसे हो गया, ऐसा हो जाता है, फिर कभी पैर आगे करता है, फिर कभी पीछे होता है। इसका हिलना और अवस्था का बदलना इस बात को सूचित करता है कि पिछली अवस्था में सुख नहीं था, क्योंकि यदि सुखी होता तो अवस्था क्यों बदलता? खड़े खड़े परेशान हो जाता है तो बैठ जाता है। अब तो खड़े खड़े परेशान हो गया, बैठ गया, इसको लग रहा है कि मैं अब आराम मिला, अब ये सुख मिल रहा है। वास्तव में यदि इसका नाम सुख हो तो फिर सुख का उपभोग करते रहो, आप बैठे रहो, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद में लगता है अब थोड़ी कमर दर्द करने लगी है, थोड़ा सा लेट ले तो आराम करना चाहता है, इसका मतलब बैठे बैठे भी सुख नहीं था, तो फिर लेटने पर तो सुख मिलता है ना साहब, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या कई लोग कहते हैं ऐसा, आराम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कितना सुख मिलता है अपने को लेटने पर, बहुत शांति मिलती है, दिन भर की भाग दौड़ थकान भागम भाग सबसे कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है हमारे को आराम करने पर, मिल रहा है ना, सुख है ना उसका नाम, अब उठना मत, इसका मतलब है कि उसमें सुख नहीं था। सब जगह पर लगा करके देख सकते हैं आप इस चीज को, टीवी देखने में सुख मिलता है कि नहीं? जहाँ से हटना चाहे वहां सुख नहीं है। एक घंटा देखता है, दो घंटा देखता है, फिर कहते बस अब बंद करो यार, बहुत अब नहीं। पढ़ने में सुख लगता है कि नहीं? सुनने में सुख लगता है कि नहीं? प्रवचन सुनने में मजा आता है कि नहीं? अरे सब आता है मजा, कितनी देर हटना चाहता है, इसका मतलब सुख नहीं था। सब जगह पर लागू होगी, इंद्रिय विषयों में भी लागू होगी, भक्ति में, पूजन में, प्रवचन में, स्वाध्याय में, क्योंकि पराश्रित क्रियाएं, इनमें सुख नहीं हो सकता। पराश्रय में सुख नहीं है, और स्वाश्रय में अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में गया, अब निकलना नहीं चाहता, अनंत काल के लिए सिद्ध दशा में रहे, बाहर निकल करके नहीं आता, वो है वास्तविक सुख, वो है सच्चा सुख, उसे कहते हैं सुख। हम तो सुख की परिभाषा ही नहीं जानते हैं, हम तो क्षणिक सुख में, विषयजन्य सुख में, मायामयी सुख में सुख मान करके बैठे हैं, जो कि दुखमय था और सुख का आभास मात्र लगता था। टोडरमल जी ने इन परिस्थितियों के संदर्भ में ऐसा कहा है कि ठीक नहीं हुआ है, कषायों की थोड़ी मंदता को कषायों का अभाव समझ लिया है, आकुलता की मंदता को आकुलता का अभाव समझ लिया है, कषायें मंद हुई है इसने समझ लिया कि मैं सुखी हो गया हूँ, सुख नहीं है, सुखी तो हुआ ही नहीं आज तक अनादिकाल से, कभी सुख तो इसको मिला ही नहीं, दुखमय आभास थे जो सुख रूप इसको लगते थे। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। बोलो ये सच्ची बात है, झूठ बोलते हैं भगवान के सामने खड़े होके, बोल तो रहे हैं, भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर हमारे, बिल्कुल भरोसा नहीं। भगवान के सामने खड़े होकर के हम पूजन बोलते हैं और कहते हैं मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, ये सच सच बता झूठ बोलता है, नहीं मिला तेरे को सुख कि प्रभु लगता तो था कि आ गया ना देख लाइन से, तेरे को जो लगता था वो झूठ लगता था। कहां कहां नहीं मिला सुख, कंचन कामिनी प्रसादों में, सोने चांदी में सुख नहीं है, गोल्ड में सुख नहीं है, हीरे जवाहरात माणिक मोती में सुख नहीं है, बताओ कितना सुख है। हिसाब लगता तो है हमारे को, जैसे जैसे बैलेंस बढ़ता है वैसे वैसे सुख की अनुभूति तो होती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है आनंद तो आता है। सब कुछ भी कहो पंडित जी, भले ही आप प्रवचन में आप कुछ भी कहो यहाँ बैठ करके, लेकिन जब आता है ना, जब बढ़ता है तो मजा तो आता है। आज हमारी सैलरी यदि $5,000 से बढ़ करके एकदम $8,000 $10,000 हो जाए तो एकदम मजा तो आता है। कुछ भी कहो आप, क्या आता है इसमें मजा, खाने पीने में मजा तो आता है, हम तो साहब घूमने फिरने के बहुत शौकीन है, हमारे को तो बहुत मजा आता है। 5-7 दिन के लिए कहीं अच्छे हिल स्टेशन पे चले जाएं, कहीं किसी जगह पर चले, बहुत मजा आता है हमारे को तो। कि सच में आता है आपको मजा खाने पीने में भी, घूमने फिरने में भी, धन में भी, पैसे में भी? सच बात है, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। हाँ साहब ऐसा ही है। हमें बतलाइए किसी व्यक्ति के जवान बेटे की मृत्यु हो गई हो, 20 साल का बेटा मर गया हो, अब उस व्यक्ति को सुखी करने के लिए क्या करें, कितना धन दे रहे हैं उसको और उससे कहें बोलो तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाओगे, उसकी पसंद का भोजन बनाएं, वो सुखी होगा? क्या बात कर रहे हो आप, हम उस फेवरेट डिश की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनने मात्र से ऑफिस से 1-2 घंटा जल्दी आ जाता था, आज ये बनने वाला है, अच्छा ऑफिस से जल्दी आ जाता था, इतना शौक था खाने का, आज क्या हो गया, अब वो सुख कहाँ चला गया? अच्छा कौन सी मूवी दिखाए उसको कि वो सुखी हो जाए, कहाँ घूमने के लिए चलने का प्लान बनाए कि वो सुखी हो जाए? क्या बात कर रहे हो साहब, इनमें तो बहुत सुख मिलता था हमारे को, अब कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो सुख? इसका मतलब ये है कि उनमें भ्रम से सुख लग रहा था, वास्तव में तो उसमें सुख था ही नहीं। मुझको न मिला सुख, क्षण भर के लिए भी नहीं मिला। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। सारे जगत को देख लिया, छान लिया, कहूं न सुख संसार में। दाम के बिना तो निर्धन व्यक्ति दुखी है, पैसा नहीं होने से। हाँ साहब गरीब व्यक्ति है तो दुखी होगा ही, तो फिर धनवान थोड़ी ना दुखी होगा कि तृष्णावश। गरीब व्यक्ति तो पैसा नहीं होने से दुखी है और धनवान व्यक्ति अपनी तृष्णाओं के कारण दुखी है। कोई नहीं है सुखी संसार में, गरीब व्यक्ति शुगर के लिए कंट्रोल रूम में चक्कर लगाता है और पैसे वाला शुगर कंट्रोल के लिए रोजाना चक्कर लगाता है, क्या सुखी तो कोई नहीं है, क्या सब दुखी दुखी है? गरीबों के अपने दुख है, पैसे वालों के अपने दुख है, संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। सब जगत देखियो छान, सारे जगत को हमने छान मारा, कहीं हमारे को कोई व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई दिया। यह संसार के अंदर कोई व्यक्ति दिखता है आपको जो सुखी हो? संसार की बात कर रहे हैं हम, जो संसार को छोड़ करके या संसार को छोड़ने के लिए जिनके कदम बढ़ रहे हैं वे सुखी हैं। मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराज ही एकमात्र हैं ऐसे व्यक्ति जो सुख की खान को भोगते हैं। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने लिखा, निर्धन जन धन बिना दुखी, हर तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। सभी भोगते कष्ट मात्र, सभी लोग ओनली कष्ट भोगते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं भोगते। हम लोग कष्ट ही कष्ट भुगत रहे हैं, इसके अलावा कर क्या रहे हैं हम? संसार दशा में टाइम पास कर रहे हैं हम, अपना कष्ट भुगत रहे हैं। अंदर की आकुलताएं, अंदर की टेंशन, कितनी घबराहट है, कितनी परेशानियां हैं हमारी, हम जानते हैं। हमने कई बार अच्छे अच्छे पैसे वाले लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, जब हमने कहा कि अरे साहब आपके तो मजे हैं, वो तो कहते हैं अरे रहने दो पंडित जी, हमारी हम ही जानते हैं। ये सच्चाई है, ये सच अंदर से निकलती है ये बात। आपको क्या पता है हमारी क्या दशा है? हमारी जगह बैठे तो आपको पता लगे कितनी तरह की बातें, हमारे घर में क्या चलता है हम ही जानते हैं। साहब आपके घर में तो बहुत संगठन है। अरे नहीं साहब, हमारी हम ही जानते हैं। साहब हमारी बनती नहीं है। अरे बनी नहीं सकती है, बनती नहीं है की बात कर रहे हो आप? ये संसार का स्वरूप बतला रहे हैं संसार भावना के माध्यम से। ये कहना चाह रहे हैं कि आप समझ क्या रहे हो? आप कह रहे हो कि बनती नहीं है, हम कहते हैं बन सकती नहीं है आपस में। ये क्यों नहीं बन सकती है? ये अलग अलग जगह से आए हो और अलग अलग जगह जाना है, एक जैसे परिणाम कैसे होंगे? बातें तो ऐसी करता है, छोटी छोटी सी बातों में ऐसा कहता है। आपके हमारे विचार कितने मिलते हैं? आप चाय नहीं पीते ना? मैं भी चाय नहीं पीता। इतने इतने सी बातों में कहता है अपने विचार कितने मिलते हैं? दो व्यक्तियों के विचार आपस में मिल नहीं सकते हैं, 100% विचार मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया वो कौन सी गति से आया है, तू कौन सी गति से आया है, तुझे कौन सी गति में जाना है? दोनों के एक जैसे परिणाम होंगे तो क्या मर के एक जगह जाएंगे? सबके संयोग अलग अलग होंगे, सबकी आयु अलग अलग है, सबका चिंतन अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सबका शरीर अलग अलग है, सबका सुख दुख का वेदन अलग अलग है, क्योंकि सबके कर्म का उदय अलग अलग है, सबके परिणाम अलग अलग, इसलिए सबका बंधन अलग अलग, सबका बंधन अलग अलग इसलिए सबका भविष्य अलग अलग। किसको मर के कहाँ जाना है और किसको कहाँ जाना है? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इष्टोपदेश में, रात्रि में एक स्थान पर आकर के विश्राम करने वाले पक्षियों के समान, वृक्ष पर आकर के बैठे हुए पक्षियों के समान हमारे परिवार की दशा दिखाई देती है। कोई कुछ देर पहले आकर के बैठा है, कोई कुछ देर बाद में आकर के बैठा है, और प्रातः काल होने पर किसी को 5 मिनट पहले उड़ जाना है, किसी को 10 मिनट बाद में उड़ना है। सब अलग अलग दिशाओं में उड़ जाएंगे, अलग अलग दिशाओं से आए थे। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं, 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। हम किससे क्या बिगाड़े, क्यों बिगाड़े हम और क्यों बिगाड़ करके चले? जितने समय के लिए हैं हम आपस में मेल मिलाप करके रहें, आपस में संगठन से रहें। क्या पता कितना सा साथ है, बतलाओ मेरे को किसका ठिकाना है? पल भर का ठिकाना नहीं है हमारा, राग द्वेष लेकर के चले जाएंगे और क्या है। साथ देना हो तो जीते जी देना, मरने के बाद तो दुश्मन भी कंधा दे दिया करते हैं, विरोधी भी कंधा देते हैं, ये भी आंसू बहाते हैं, क्या दम है उसमें? मरने के बाद तो सब तारीफ करते हैं, फिर तो सोचते हैं अरे यार चला ही गया, क्या क्या बुराई करना उसकी, आदमी तो भला था। ऐसी बातें करने वाले मिल जाते हैं, पर जीते जी कोई नहीं पूछता है। आपको यदि व्यक्ति की कद्र करनी है तो जीते जी करना। हमें पता है मरने के बाद में आंसू आएंगे, पर जीते जी पूछते नहीं थे। बोलो आचार्य, ये जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में कहते हैं, जगत का आय स्वभाव हुआ संवेद वैराग्यार्थम। सच में जगत का स्वरूप ऐसा है जो संवेग उत्पन्न करने वाला है, जो वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। सच में ऐसा है जगत का स्वरूप। लोगों के मन ऐसे हैं, लोगों के परिणाम ऐसे हैं, बाहर में वैभव हो लेकिन परिणामों से दरिद्री है, विचारों से दरिद्री है। हम कहते हैं वचने किम दरिद्रता, वचनों में क्या दरिद्रता है, परिणामों में क्यों दरिद्रता रखता है। परिणामों में तो उज्ज्वलता रख, आपके परिणामों की उज्ज्वलता भविष्य, उज्ज्वल भविष्य को प्रदर्शित करता है। जिनके परिणाम हीन दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब उनका भविष्य अंधकारमय है। वर्तमान में आप कितना भी दूसरे के बारे में कुछ भी सोच रहे हो लेकिन भविष्य आपका बिगड़ जाएगा, आप बिगाड़ रहे हैं अपना भविष्य। कल का ठिकाना नहीं है, 5 मिनट बाद में जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? अपने राग द्वेष और कषायों को लेकर के चला जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तिरियन चारी गतियों में चला जाता है। तो यहाँ संसार अनुप्रेक्षा के संदर्भ में कितनी सरल बात कह दी यहाँ कि मुझको न मिला सुख क्षण भर भी संचल कामिनी और प्रासादों में, किंचित भी मेरे को सुख नहीं मिला। तो साहब मेरे को सुख लगता, देख भाई तू सुख मत मान, तू यदि इनमें सुख मानेगा तो ऐसे कर्म बनेंगे कि भविष्य में भी दुख उठाना पड़ेगा। तो कहता है पंडित जी देखो सुख तो लग रहा है, कहा देख तेरे को कर्म बंधेंगे भविष्य में भी दुख उठाना पड़ेगा, कि कोई बात नहीं बंधेंगे तो बन जाएंगे, सब मिल बांट के भोग लेंगे, हमारे घर में तो बहुत यूनिटी है। तो फिर आचार्यों को संसार के तुरंत बाद में एकत्व भावना लिखनी पड़ी। तू जो समझ रहा है ना कि कर्म बंधेंगे बंद जाने दो, सुख भोग रहा हूँ भोग लेने दो, देखेंगे बाद में निपट लेंगे, जब पाप कर्म का हो जाएगा तो भोग लेंगे, सब मिल बांट करके सब लोग साथ में कर लेंगे। तो कहा ये संभव नहीं है, अकेले अकेले भोगना पड़ेगा। ऐसी बात आगे एकत्व भावना के अंतर्गत कह दी गई है जिसकी चर्चा अपन फिर आगे कर।
Yeah.